Thank you for being here this evening.
आप सबका यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
It is truly a blessing and a fortune for me to have the opportunity to be among all of you this evening.
आज शाम आप सबके बीच में उपस्थित होना ये मेरे लिए एक महत भाग्य की बात है.
Goa is a place that is famous throughout the entire world to come to enjoy all sorts of material pleasures.
पूरे विश्व में गोवा भौतिक सुख के लिए बड़ा एक विख्यात स्थान है.
People spend so much money to come here.
लोग बहुत पैसे खर्च करके यहाँ पर आते हैं.
And people probably make so much money because they come.
और यहाँ कई लोग ये लोग आते हैं इसलिए बहुत पैसा बनाते भी हैं.
When I first came, Anjuna Beach.
मैं पहले अंजुना बीच पे आया था.
I had to climb over a mountain to reach it.
और मुझे एक पर्वत चढ़कर वहाँ पे पहुँचना पड़ा.
And it was such a wonderful place.
और वो बड़ा अद्भुत स्थान था.
There was nothing and no one there.
उस समय वहाँ पर कोई नहीं था.
Just beautiful sand and ocean and coconut trees.
सुंदर बालू समुद्र और नारियल के पेड़.
And I did not see a single human being.
और मैंने वहाँ पे कोई एक मनुष्य तक नहीं देखा.
Only when you went inland for some distance, there were some little houses made out of banana leaves.
और किनारे से दूर जब आप अंदर जाते हो, तब वहाँ पर आपको कुछ कुटीर या झोपड़ी जैसे दिखती थी जहाँ पर लोग रहते थे.
And palm leaves and
और वो केले के पत्ते या ताड़ के पत्ते वहाँ पर लगा कर वो अपनी झोपड़ी बनाते थे.
Simple people lived there, and in the early morning they would take little rowboat and go out into the ocean to try to find some fish.
सादे लोग थे, सादा जीवन था. सुबह प्रातः समय उठकर कुछ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करते थे.
So the whole time I was there, it was so quiet and so secluded. I didn't say a single word to anyone because there was no one.
और इतना सुंदर, इतना सुंदर स्थान था वो, इतना अंधेर मनुष्य जैसे कि मैं किसी के साथ कोई बातचीत तक न कर पाया.
I have not been there since then.
और उसके बाद मैं फिर कभी वापस गया नहीं वहाँ पर.
That was 1971.
ये 1971 की बात है.
But today I asked someone what it is like, and it is very different.
आज जब मैंने पूछा कि आज वो बीच कैसा है, तो उन्होंने कहा कि आज बहुत परिवर्तन हो गया है उसमें.
Goa, over the past few decades, have become such a world-famous place to come to just relax and enjoy.
पिछले कई दशकों में सारे विश्व में गोवा एक बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भौतिक सुख का आनंद लें.
But if we go back into history, it was created by Lord Parasuram.
लेकिन अगर हम इतिहास के पर्दे के पीछे झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भूमि परशुराम जी ने बनाई हुई भूमि है.
After he has conquered the Kshatriya race for so many times, he wanted a place for this exclusive purpose of performing tapasya.
पृथ्वी पर जो भी क्षत्रिय वंश थे उनका संहार करने के बाद परशुराम जी को अपनी तपस्या के लिए एक भूमि की आवश्यकता थी.
And he threw his weapon in the ocean, and from where it landed, the ocean receded, and this is reclaimed land by Parasuram. And for long, long time, this was the place of sages and rishis to perform tapasya for the highest enlightenment.
परशुराम जी ने अपना आयुध फेंका और समुद्र ने पीछे हटकर उनको भूमि दी, तो कई हजारों वर्षों के लिए ये एक दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाली तपोभूमि है.
And that has not changed.
और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक.
This part of India is still, it was created for that purpose and it is still for that purpose.
भारत का ये भाग उसी तप के लिए बनाया हुआ है और आज तक वो तप के लिए ही उपलब्ध है.
But for many it has been forgotten.
लेकिन कई लोगों को इस बात की विस्मृति हो गई.
The concept of yukta vairagya is to understand everything's original purpose.
हर एक वस्तु का मूल प्रयोजन जानना, ये युक्त वैराग्य संकल्पना की नींव है.
And that is for service.
और वो है सेवा.
Everything in the material world is ultimately meant for the service of Sri Bhagavan, for the purpose of enlightenment.
भौतिक जगत में उपलब्ध हर एक वस्तु वास्तविक श्री भगवान की सेवा के लिए है.
Shubhavilas Prabhu asked me to speak something on the subject of community.
Shubhavilas Prabhu ne aaj mujhe ye anurodh kiya hai ki bhakt samaj ka nirman kaise ho iske upar kuch main updesh karun.
In this regard, let us go back to 1922.
Aur iske liye hame ateet mein 1922 में जाना होगा.
When a young man who just had a family and a child, Abhay Charan, met a great Mahatma on a rooftop in Kolkata named Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada.
इस वर्ष में अभय चरण डे नामक एक नवयुवक, जिसका अभी विवाह हुआ था, एक पुत्र का पिता था, और वो कोलकाता में एक स्थान पर एक महान महात्मा, एक महान वैष्णव भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब मिला.
At that first moment of their meeting, Abhay Charan, who later became our Srila Prabhupada, was given the request, "You are intelligent young man. Take this message of Lord Chaitanya, Krishna consciousness, to the whole world in the English language."
जिस क्षण अभय चरण की उन महात्मा के साथ भेंट हुई, उसी समय इस महात्मा ने उनको ये आज्ञा दी, आप पढ़े लिखे नौजवान युवक हो, आप सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसका अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए.
In the course of the discussion, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada explained what Krishna consciousness is.
और इस चर्चा में श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जिस कृष्ण भावना का उपदेश करने की बात की थी, वो कृष्ण भावना की व्याख्या क्या है वो भी उन्होंने वहां पर बताई.
It is the original natural consciousness of all living beings.
कृष्ण भावना अर्थात हर एक जीव की मूल स्वाभाविक भावना.
It is to understand the nature of the atma, the true self.
ये आत्मा हमारा सत्य स्वरूप क्या है वो जानना.
जीवर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. We are all eternally servants of Sri Krishna.
हम सब श्री कृष्ण के मूलतः नित्य दास हैं.
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान. There is one supreme eternal and there are many many eternals emanating from that one supreme eternal and they are all subordinate to their source.
एक परम चेतन है और उनसे अनेक अनेक कोटि कोटि चेतन उत्पन्न होते हैं और ये जो उत्पन्न हुए चेतन जीव हैं वे सब उनके दास हैं.
We are all eternal, full of knowledge and full of ananda, bliss.
हम सब नित्य चेतनामय और आनंदमय हैं.
But when we forget our true nature as eternal servants of Krishna, we lose connection. We lose awareness of our eternality, our knowledge, and our true happiness.
लेकिन जब इस मूल नित्य चेतनामय और आनंदमय जीव को विस्मृति होती है, तब वो अपने स्वरूप को पूरी तरह से भूल जाता है.
Krishna consciousness is not given or received, it is awakened. Krishna, it is already within us.
Krishna bhavana na di jati hai na li jati hai, wo jagrut ki jati hai.
Nitya siddha Krishna prema satya kabu noy sravanadi sudhi chiti koriye udoy. That love Krishna is within the heart of every being.
Krishna prem har ek hriday ke sthit mein vidyaman hai.
By associating with people who have that love and by chanting God's names, it is awakened.
Un premi bhakton ka sang karke jinme ye prem hai aur Hare Krishna mantra ka kirtan karke is prem ko udit kiya jata hai.
Everything else is artificial.
Baki sab kritrim hai.
And all sufferings and conflicts, both within the mind, within the heart, and within the world, are due to forgetfulness of this principle of Krishna consciousness.
और सारे दुख, सारे क्लेश, सारे संघर्ष, चाहे मन में हो, चाहे बाहर हो, विश्व में कहीं भी हो, ये सब इस सत्य की विस्मृति के कारण ही होते हैं.
Srila Saraswati Thakur told that there are always changes of this world, changes of seasons, changes of political parties, changes of who's victorious and who's defeated, who's in power and who's not in power, changes in economic situations in the world. But the awakening of Krishna consciousness cannot wait. That's the only true solution to the real problems of life.
Srila Bhaktisiddhanta Thakur ne kaha कि ये संसार सारा परिवर्तनशील है, सदैव परिवर्तन होता ही रहता है. अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजकारण में परिवर्तन, किसी का जय किसी का पराजय, लेकिन एक चीज़ जो है जो कभी परिवर्तनीय नहीं है वो है, और जो कभी किसी लिए उसको विलंब नहीं कर सकते, वो है कृष्ण भावना को जागृत करना.
When we have that consciousness, we can deal with all these other problems and make real solutions.
Agar hamare hriday mein wo chetna wo bhavana hai, hum inhi sabhi samasyaon ka theek tarah se samadhan kar sakte hain.
I would like to give a very essential definition of Krishna consciousness.
Main Krishna bhavana ki ek atyant saral vyakhya karna chahunga.
To be conscious and to apply that consciousness to our words, our thoughts, and our actions, wherein Krishna is in the center of our lives.
अपनी भावना जागरूक रखना, और वो भावना कौन सी? काया, मन, वाचा से श्री कृष्ण को जीवन में केंद्रित रखना.
And our only true success in anything we do, in our families, in our occupation, in our spiritual practices, is samsiddhir hari doshanam. How are we pleasing Krishna?
और हम जितना श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं, उतना ही हम हमारे घर, कारोबार, संसार, परिवार, जो भी हमारा व्यापार है, उसमें अगर हमने कृष्ण को संतुष्ट किया, तो हम सब दृष्टि से संतुष्ट हो गए.
In material consciousness, the bewildered soul, under the influence of ahankar, thinks oneself to be the subject, and all the things and people of this world are objects, objects for me to enjoy.
भौतिक भावना में इस भ्रम में अहंकार से प्रेरित होकर जीव अपने आप को विषय समझता है और अपने इर्द गिर्द सारी वस्तुओं को भोग्य समझता है।
Srila Prabhupada gives analogy, if there's a pond of water and we throw stones in so many different places in that pond, wherever one stone lands, circles begin to emanate from it and get larger and larger, they expand. And all those circles collide because they all have a different center.
Srila Prabhupada ek sundar upma dete the, kisi talab mein agar log patthar phek rahe hain, जैसे ही पत्थर का जल से स्पर्श हो गया तो वहाँ से अलग अलग पानी में हम चक्र देखेंगे, और क्योंकि ये पत्थर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर गिर रहे हैं, इनमें से जो उत्पन्न वर्तुल या उसमें जो चक्र है, ये एक दूसरे से सदैव टकराते जाएंगे।
कृष्ण कॉन्शियसनेस सिंपली मीन्स दैट वी रिकॉग्नाइज एंड लिव इन द स्पिरिट that Krishna is the subject.
और कृष्ण भावना का मतलब है कि कृष्ण हमारे जीवन के मूल विषय हैं, मूल केंद्र बिंदु हैं, और इस भावना में हम हमारा जीवन यापन करें।
And myself, my soul, my body, my mind, my words, every other living being and everything within creation is an are objects for Krishna's enjoyment.
और मैं, मेरा मन, मेरी काया, मेरी वाचा, मेरे सारे संबंध, यहाँ उपस्थित समस्त सांसारिक वस्तुएं, ये सब केवल कृष्ण के उपभोग के लिए है।
We have often heard the concept that Krishna is the supreme enjoyer and we are all meant for his enjoyment.
हमने ये सुना है कि श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं और हम उनके सेवक हैं।
But what does that really mean?
इसका वास्तविक अर्थ क्या है?
We no longer see things in terms of myself in the center. We see everything in terms of what will please Krishna.
इसका अर्थ क्या है? कि हर एक वस्तु को वो मुझे कैसे आनंद प्रदान करती है, ऐसे न देखते हुए ये वस्तु श्री कृष्ण की सेवा में मैं कैसे युक्त कर सकता हूँ, ऐसे में सोचना प्रारंभ करता हूँ।
How I interact with other people, devotees, the general society, the animals, the birds, the insects, the trees, all the objects of life. How to see it all for Krishna's enjoyment?
मैं अपने आप को, मेरे इर्द गिर्द जो भी कुछ है, वो पशु पक्षी कीट पतंग बाकी का समाज, इन सब को मैं कृष्ण के साथ संबंधित कैसे देख सकता हूँ?
When we agree on that principle and live according to that idea, it's like putting a single stone in the pond and all of the circles expand in a very, very harmonious way because there's one center.
और जब इस बात के ऊपर हम दृढ़ होते हैं कि केवल कृष्ण ही एकमात्र उपभोग करने वाले हैं, तो इसका अर्थ ऐसे हो गया कि सारे पत्थर जो हैं वो एक ही केंद्र स्थान पर गिरते हैं और फिर उसमें से जो चक्र बाहर निकलते हैं वो एक दूसरे से टकराते नहीं।
That is Krishna conscious community.
ये कृष्ण भावना भावित समाज हो गया।
And how does Krishna tell us to live like this?
और इसमें कैसे जीवन यापन किया जाए, इसके बारे में भी भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए हैं।
गोपी भारतवर पद कमल और दास 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 अनुदास। To actually identify ourselves not as the subjective enjoyer, but as the enjoyed. Who is enjoyed by being servant of the servant of the servant?
इसमें अपने आप को उपभोगी न मानकर अपने आप को भोग्य के भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। किस भावना से? उनके दास के दास के दास के रूप में।
We are not concerned with fame or position or wealth or any of these things because they come and go.
इसमें हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा संपत्ति इसमें हमको कोई रुचि नहीं है क्योंकि ये आते हैं जाते हैं
kamala dala chala jivana tala mala like a drop of water on a lotus leaf everything of this world our fame our power our position our influence our money our loved ones everything is going to go very soon
kamal ke patte par जैसे एक जल का बिंदु कैसे थर थर कांपते रहता है अभी गिरेगा और गिर जाता है उसी प्रकार से जीवन की सारी वस्तु हमारी संपत्ति हमारे सगे संबंधी यहाँ तक कि हमारा देह भी ये सब एक दिन जाने वाला है
We must attend to our responsibility in all of these matters which I just listed.
जो भी हमारे पारिवारिक व्यापार विषयक या जो भी भौतिक जीवन से संबंधित वस्तुएं उनके बारे में जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको तो हमको निभाना है ही
But in Krishna consciousness, as the servant of the servant for the pleasure of Krishna.
लेकिन कृष्ण भावना में श्री कृष्ण के दास के रूप में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमको ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है
But the nature of this world is many complications. Complications in so much fighting and so much disagreement over what pleases Krishna.
लेकिन ये दुनिया का स्वरूप कैसा है देखो इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की संतुष्टि कैसे की जाए इसमें भी मतभेद इसमें भी संघर्ष इसमें भी कलह उपस्थित होते हैं
And Is our soul trying to be the enjoyer enjoyed? Is it Krishna conscious or not? We like to think it is. And even in devotional communities, conflicts come. What pleases Krishna? I'm right. No, I'm right. No, I'm right. No, I'm right. No, none of you are right. Only I am right.
So Krishna ki santushti ke liye bhi कौन कहता है कि ये सही रास्ता है कोई कहता है कि मैं कहता हूँ ये कृष्ण को संतुष्ट करने का सही रास्ता है दूसरा कहता है कि नहीं आप गलत मैं सही तो मैं इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने के मामले में भी हमारा अहंकार ऊपर आ जाता
But Krishna taught us how to resolve this issue in a very simple way.
लेकिन इस कलह को भी किस प्रकार से हल किया जा सकता है इसका समाधान भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है
साध्विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सैवेह वी अप्रोच अ गुरु हु एक्चुअली व्हेन वी हैव अ गुरु दैट पर्सन इज गिविंग अस द इनसाइट ऑन हाउ टू बेस्ट प्लीज कृष्ण
इसका समाधान ऐसा है कि भगवान किस प्रकार से संतुष्ट हो इसके लिए हम एक आध्यात्मिक या सद्गुरु के चरणों के पास जाते हैं
यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद नागति कुतोपि when we please the guru we please krishna
जब
when we displease the guru there's no possible way that we can please krishna
जब हम गुरु को संतुष्ट करते हैं तभी हम श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं अगर गुरु संतुष्ट नहीं हुए तो श्री कृष्ण कदापि संतुष्ट होना असंभव है
That's not a political idea. That's simply the way Krishna arranged everything.
ये कोई राजकीय मत नहीं है किंतु ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है
So simple living, high thinking.
तो सादा जीवन उच्च विचार
True detachment is yes, when there are different opinions, we consult our guru and then we understand how we should work together according to that principle.
तो अगर मतभेद उपस्थित हो भी गए हम सदगुरु के शरण जाते उनसे विचार विमर्श करते हैं उनके उपदेश को ग्रहण करते हैं और उस प्रकार से हम उस कलह को संपुष्ट कर सकते हैं
And in this way, we can really, truly have a clear picture of whether I'm keeping myself in the center as the subjective enjoyer, or I'm actually trying to be the servant of the servant of the servant.
और इसी मापदंड से, इसी मानक से, इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि मैं अपने आप को किसी भी विषय में केंद्र में रख रहा हूँ, एक उपभोक्ता के रूप में, या मैं दास के दास, श्री कृष्ण के दास के दास के दास के रूप में उनकी सेवा कर रहा हूँ।
Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is simple when we have a simple heart, and complicated when we have a very complicated heart.
Srila Prabhupada कहते थे कि सादे हृदय वालों के लिए कृष्ण भावना भी बड़ी सरल है, जटिल कुटिल चित्त वालों के लिए वो उतनी ही जटिल और कुटिल है।
And this is what it means to have a simple heart, to be a servant of the servant of the servant, knowing how I help others is how I'm serving Krishna.
और दास के दास के दास के रूप में रहना यही एक सादे सरल हृदय का मानक है कि मैं किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ।
And in a community there are so many challenges and so many opportunities.
एक समाज में एक साथ ही अनेक संघर्ष और अनेक सुसंधियाँ उपलब्ध होती है।
I am very grateful and very overwhelmed with happiness to see how so many of you have served together in this spirit to create this wonderful little temple in Goa.
मैं देखकर कि आपने ये कितना सुंदर यहाँ पर मंदिर बनाया है, कितने लोगों ने कई वर्षों से मिलजुल कर सेवा की है, इसलिए मैं सही में बहुत आनंद भी हूँ और सबका ऋणी भी हूँ।
I believe this city is called Basco.
इस भाग को वास्को कहते हैं।
And Shyamananda ji, my very dear inspirer, he has told me that it's named after the explorer Vasco da Gama.
और वास्को दा गामा के नाम पर ये नाम पड़ा है इस प्रदेश का।
And he sailed on ships all over the world trying to find something.
और ये महाशय सारे पृथ्वी पर भ्रमण किए, कुछ ना कुछ खोजने की उनकी इच्छा होगी।
But what he was ultimately looking for but never found is now here in Goa in the form of Nitai Gauranga Mahaprabhu.
लेकिन जिस चीज को वो ढूंढ रहे थे वो उनको मिली नहीं, लेकिन आज यहाँ पर श्री श्री निताई गौरांग महाप्रभु के रूप में वही चीज यहाँ पर उपस्थित है।
And I was told that there are 7 different centers here in Goa, and how you are all in the mood of servant of the servant of the servant with a higher principle of pleasing Krishna. Serving together, that will be the success of all of us, because that is how we will please Krishna.
और मुझे ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कई जगह पर साप्ताहिक स्वरूप के सत्संग कार्यक्रम होते हैं, आप सब मिलजुल कर एक दूसरे के दास के रूप में सेवा करते हैं, और इसी तरह से अगर हम सेवा करते रहेंगे तो हम निश्चित श्री कृष्ण को संतुष्ट कर पाएंगे।
In a community that is Krishna conscious, we see everyone as Krishna's beloved children.
एक कृष्ण भावना भावित समाज में हम इतर प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक दूसरे व्यक्ति को हम श्री कृष्ण की संतति के रूप में देखना सीखते हैं।
Our own family members, my own body, mind.
हमारे अपने परिवारजन, हमारी अपनी काया, अपना मन,
all other families,
बाकी सारे परिवार,
ब्रह्मचारी साधु,
ब्रह्मचारी साधु,
we are all here for that higher purpose.
हम सब इस उच्च उदात्त प्रयोजन के लिए यहाँ पर हैं इस समाज में,
to empower each other,
एक दूसरे को सक्षम करें।
Today I got a message from somebody who did a really wonderful thing for the purpose of spreading Krishna consciousness.
आज एक व्यक्ति ने कृष्ण प्रचार में कृष्ण भक्ति के प्रचार में कुछ उल्लेखनीय विलक्षण कार्य किया और उससे मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ.
And when I read it, I felt so happy.
और उसको पढ़ने के बाद मैं बड़ा आनंदित हुआ.
And I was thinking, what a wonderful happiness that is to actually appreciate somebody else doing wonderful things for Krishna, to appreciate someone else getting good success.
तो मेरे मन में ये विचार आ गया कि किसी दूसरे को कृष्ण भक्ति के प्रचार में इतना सुयश प्राप्त हो रहा है तो उसके यश की स्तुति करना, उसके यश के आनंद में सम्मिलित होना, ये कितनी सुंदर भावना है.
And I studied that happiness.
और मैंने फिर उस हर्ष का, उस आनंद का अध्ययन किया.
For a few seconds.
कुछ क्षणों के लिए.
And I discovered that this happiness is so much sweeter than when I accomplish something myself.
तो मैं इस निष्कर्ष प्रति पहुंचा कि मैं अगर कुछ कर पाता हूं उससे भी कई गुना अधिक ये आनंद मिल रहा है.
When we accomplish something ourselves, we know that Krishna is the ultimate doer who's empowered us to do it.
अगर हम कुछ करते हैं तो हमें ये मालूम है कि वास्तविक कर्ता तो भगवान है, हम केवल निमित्त हैं.
If I do something nice, if my mother didn't give me her milk when I was a baby, I never would have been able to do this.
अगर आज मैं कुछ करता हूँ तो मुझे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जब शिशु था तब मेरी माँ ने अगर अपना दूध मुझे पिलाया ना होता तो मैं ये नहीं कर पाता था आज.
Everyone who has ever helped me in my whole life, what to speak of the devotees who gave me something to give people, they are all responsible. How can I take the credit?
लेकिन जितने लोगों ने मुझे सहायता की है, भक्तों की तो बात ही दूर, भक्तों ने तो मुझे ये कृष्ण भक्ति का प्रचार सिखाया है.
And ultimately, it's all coming from Krishna.
तो ये सब मेरे लिए पूजनीय है और अंतिम बात यह है कि ये श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित की हुई चीज है.
So we're just instruments.
हम केवल निमित्त हैं.
We could be instruments of Krishna and bhakti, or we could be instruments of Maya and illusion.
इच्छा रही तो हम भगवान कृष्ण के हाथ के निमित्त हो सकते हैं, नहीं तो हम माया या भ्रम के भी निमित्त हो सकते हैं.
So when we give credit to Krishna and others for whatever we've done, that is real happiness.
तो जब हम श्री कृष्ण या बाकी भक्तों को जो भी कुछ हो गया उसका श्रेय प्रदान करते हैं उस समय जो आनंद होता है वो सत्य आनंद है.
And when we find joy in someone else doing something wonderful, that's even a deeper happiness.
और जब हम किसी और के यश की स्तुति करते हैं और उसमें हम आनंद या हर्ष अनुभव करते हैं तो वो अधिक मधुर और अधिक गंभीर होता है.
How Krishna is pleased. Just like any mother or father is so happy when their children appreciate each other rather than fighting over things.
कृष्ण कैसे संतुष्ट हो, सादी बात है, अगर एक परिवार में माता पिता हैं उनके लिए सबसे बड़े हर्ष की बात यही होती है ना कि जब वो देखते हैं कि अपने बच्चे एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं, न कि संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे के साथ.
Because to be a real well-wisher, to find joy in other people's good fortune, is love.
क्योंकि सत्य हितचिंतक बनना, सत्य रूप से दूसरे के यश की स्तुति करना, ये वास्तविक सच्चा आनंद है.
And when Krishna is in the center of those relationships, it is true love. It is Krishna consciousness.
वो वास्तविक प्रेम है और जब श्री कृष्ण इन संबंधों के बीच में केंद्र में रहते हैं तो वो उस प्रेम का वास्तविक स्वरूप है.
Whatever we do, we could analyze. I'm successful in this from a spiritual perspective to the degree I'm truly in the spirit of servant of the servant of the servant.
मैं अगर किसी चीज में अगर आध्यात्मिक रूप से यशस्वी हूं तो वो समझने का एकमात्र तरीका यह है कि क्या मैं अपने आप को वास्तविक रूप में श्री कृष्ण के दास का दास देख सकता हूँ?
King Pratapa Rudra, he was the controller of the entire kingdom of Odisha.
महाराज प्रताप रुद्र संपूर्ण ओडिशा प्रांत के नरेश थे.
Wonderful palaces, beautiful queens, very, very obedient children, and incredible power and influence.
और उनके उत्तम राज प्रासाद, सुंदर महिषियां, सुंदर उनकी पत्नियां और संपत्ति, सारा वैभव था उनके पास, प्रभुत्व था.
And we read in history how many kings there have been who used that power and wealth and influence for their own purposes.
और कितने ही राजाओं ने अपने इस प्रभुत्व का या अपने इस संपत्ति का दुरुपयोग किया है, ये हम इतिहास में पढ़ सकते हैं.
श्री चैतन्य महाप्रभु refused to see King Pratapa Rudra because the Lord was a sannyasi and he didn't want to mix with such materialistic person.
श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी होने के नाते उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र से मिलने तक के लिए भी इनकार कर दिया, क्योंकि ये भौतिकवादी भोगी व्यक्ति है.
But when Ramananda Rai came to Lord Chaitanya and told him, I wanted to come to be with you, and King Pratapa Rudra, who knew I was his best governor, he gave me my whole lifetime of leave with a complete with complete salary.
लेकिन जब रामानंद राय
and said how fortunate you are that you have the opportunity to give your life and heart to be in the association of Lord Chaitanya.
रामानंद राय प्रताप रुद्र महाराज के एक राज्यपाल शासक थे. उनके प्रतिनिधित्व करते हुए वो दूसरे प्रदेश के ऊपर राज करते थे. जब रामानंद राय ने बताया महाराज प्रताप रुद्र को कि मैं आपकी सेवा छोड़कर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप कितने भाग्यशाली हो, आपके लिए ये मौका है, संधि है, मेरे लिए नहीं है. आप जाओ, मैं आपको उर्वरित सारे जीवन के लिए, पूरे शेष जीवन के लिए जितने भी आपकी महीने की तनख्वाह है वो मैं दे दूंगा. और ये बात रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बताई.
Now please understand, this was a great loss for King Pratapa Rudra.
एक बात ध्यान
दें, losing a faithful, extremely competent governor of an entire state.
एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महाराज प्रताप रुद्र अपने ही एक प्रदेश के एक अत्यंत सक्षम और उत्तम राज शासक को खो रहे थे.
But he was thinking about what will please the Lord.
लेकिन वो ये देख रहे थे कि महाप्रभु किससे संतुष्ट हों.
Lord Chaitanya was so pleased.
महाप्रभु अति
संतुष्ट. मद भक्ता पूजा व्यधिका. That one Krishna tells in the Adi Purana, one who worships my devotee is more dear to me than one who worships me.
आदि पुराण में भगवान कृष्ण स्पष्ट उक्ति करते हैं, जो मेरा भक्त है उससे भी अधिक श्रेष्ठ है जो मेरे भक्तों का भक्त है.
श्री चैतन्य देव टोल्ड रामानंद राय दैट बिकॉज द किंग हैज प्लीज्ड एंड अप्रिशिएटेड अ डिवोटी लाइक यू, कृष्ण विल सर्टेनली ब्लेस हिम.
श्री चैतन्य देव ने रामानंद राय से कहा, क्योंकि राजा ने आपके जैसे एक भक्त को संतुष्ट किया है, शीघ्र श्री कृष्ण भी उनको संतुष्ट करेंगे, उनके पर कृपा बरसाएंगे.
And when it came to the time of Ratha Yatra, the king Pratapa Rudra, he was sweeping the street with a broom.
और रथ यात्रा के पर्व पर महाराज प्रताप रुद्र राजा होने पर भी एक झाड़ू लेकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू दे रहे थे.
He recognized King Pratapa Rudra, this palace, this kingdom, all these people, none of them are mine. They are all Jagannath's. I'm just the servant of the servant of the servant. If he wants me to rule, I'll rule. If he wants me to sweep, I will sweep.
महाराज प्रताप रुद्र की भावना थी कि ये राजप्रसाद, ये संपत्ति, ये कोष, ये सेना, ये सब मेरी नहीं है, ये सब भगवान जगन्नाथ के स्वामित्व की, उनकी है ये सब वस्तुएं, उनकी इच्छा होगी तो मैं राज करूंगा, उनकी इच्छा रही तो मैं यहाँ पर झाड़ू भी दे सकता हूँ।
He took the humblest, most menial position with great joy to be the humble servant of everyone.
अतिशय हर्षपूर्वक उन्होंने ये नीचतम भूमिका निभाई कि मैं सबका दास हूँ।
And Lord Chaitanya was so pleased.
और चैतन्य महाप्रभु अतिशय हर्षभरित हो गए।
It was then he decided he would give his complete mercy to the king.
उसी क्षण उन्होंने तय किया कि मैं राजा के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा का वर्षाव करूंगा।
Later in the Rathyatra, Lord Chaitanya embraced King Prataparudra. He wept tears of love and bathed King Prataparudra and showed him his original form of Krishna.
कुछ समय बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन दिया, गाढ़ आलिंगित किया और उनको अपना भगवान श्री कृष्ण का रूप में दर्शन भी दिया।
He still lived in his palace, he still had his family, he still had all of his duties as king. But Lord Chaitanya saw he was doing it truly in a spirit of love, serving everyone. Even with the justice system, he was protecting the innocent as their servant.
और इसके बाद भी राजा राजा ही रहे, अपने राजमहल में रहे, राज कारोबार करते रहे, लेकिन जो भी कुछ वो करते थे, वो अगर किसी निष्पाप को रक्षण करना है, किसी को दंडित करना है, तो वो भगवान के सेवक के रूप में ये भूमिका निभाते थे।
And he was also serving those who were breaking the laws by stopping them from doing it because they were ruining themselves karmically.
और जो अपने कर्म वासना की शिकार बनकर कुछ गलत काम भी कर रहे थे, उनको दंड देना भी महाराज एक सेवक के रूप में दंडित देकर उनको अपने कर्म चक्र से बचाते थे।
King Prataparudra received such intimate perfection in the blessings he received, and all the devotees around were the most happy, happier than if they received the blessing themselves.
Prataparudra Maharaj ko aisi samsiddhi prapt hui aur baki sare bhakt उनका ये सौभाग्य देखकर इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए।
There was no envy.
इसमें कोई मत्सर की भावना नहीं थी।
Because when we see that Krishna is the enjoyer, we love to see Krishna enjoying someone.
क्योंकि हम देखते हैं कि
doesn't have to be us.
हम देखते हैं कि कृष्ण उपभोक्ता हैं, तब कृष्ण दूसरे किसी के सेवा का उपभोग करते हुए हमको आनंद होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम ही से द्वारा सेवा लेकर भगवान संतुष्ट हों।
We have just heard of that spirit of bhakti in a king and how it pleased the Lord. Now let's look at another personality. His name was Suklambar. No, I'm sorry, his name was Kolabecha Sridhar.
एक राजा इस प्रकार की भक्ति की भावना से कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकता है, इसका हमने एक उत्तम उदाहरण देखा। अब हम एक बड़ा ही निराला उदाहरण देख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है कोलवेच श्रीधर।
He was so poor economically.
वो महादरिद्री था।
He made his living just selling banana leaves.
वो कुछ केले के पत्ते बेचकर अपना जीवन यापन करता था।
Sometimes banana flowers, banana roots, or sometimes bananas.
कभी केले, कभी केले के पत्ते, कभी गर्भथोड़, ये सब बेचकर वो कैसे बेचे अपना जीवन यापन।
King Prataparudra had a magnificent palace. Kolabecha Sridhar had a little one room little tiny one-room straw hut.
Maharaj Pratap Rudra ke paas ek uttam raj prasad aur yahan Kholavijaya Sridhar ke paas ek mamuli si kutir.
King Pratap Rudra wore the finest clothes and Kholavijaya Sridhar just had one set of old ripped up clothes that he just put on like rags.
Pratap Rudra Maharaj ke paas uttam reshim ke vastr aur Kholavijaya Sridhar ke paas kuch phati purani chindiyan hi pehenne ke liye thi.
But little Nimai would come every day to argue over the price of bananas with Kholavijaya Sridhar.
Lekin yuvak Nimai wahan par aakar pratidin Kholavijaya Sridhar ke saath uske jo kele ke patte hain unki sab uski keemat ke upar unki sangharsh ki ek malika hoti thi.
Nimai in his child, or Lord Chaitanya in his childhood was named Nimai. At the conclusion of the arguments, which was usually a couple hours, Nimai would usually steal the bananas.
Aur pratidin 2 ghante inke saath is prakar se keemat ke upar jhagda karne ke baad iski parinati kya hoti thi ke Nimai pandit ka jay hota tha aur kabhi kabhi wo bina paise diye wo kele chheen ke le jate the.
And Kholavijaya Sridhar was most happy.
Aur Kholavijaya Sridhar usko dekhkar bade anandit hote the.
Years later, when Nimai manifests himself as the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya, he offered Nimai or Kholavijaya Sridhar any benediction he wanted.
Kai varshon ke paschat Nimai pandit ne Kholavijaya Sridhar ke samne अपनी महाप्रकाश विभूति प्रकट करके उनसे कहा कि जो मन में इच्छित है उस वरदान को मांगो.
I will give you magnificent kingdom.
मैं आपको सार्वभौम राजा बना सकता हूँ.
Sridhar said, I have no interest in kingdom.
Sridhar ने कहा मुझे राज्य में कोई रुचि नहीं है.
I will give you elevation to the heavenly worlds.
मैं आपको स्वर्ग में वास दे सकता हूँ.
He refused.
उन्होंने इनकार किया.
I will give you the 8 mystic yogic cities where you could perform incredible miracles.
मैं आपको अष्ट सिद्धि से युक्त कर सकता हूँ.
Sridhar said that will be such a distraction to have the ability to do miracles. I don't want.
Sridhar ने कहा मेरा मन विचलित होगा मुझे नहीं चाहिए.
I'll give you liberation from suffering, mukti.
मैं आपको क्लेश से मुक्ति दे सकता हूँ.
I have no concern for mukti.
उन्होंने कहा मुक्ति में मुझे कोई रुचि नहीं.
I'll give you elevation to the spiritual world.
मैं आपको वैकुंठ में पहुँचा सकता हूँ.
Sridhar wouldn't accept anything.
Sridhar ने उससे भी इनकार कर दिया.
Sridhar said, I only want to please you.
Sridhar ने कहा मेरी इच्छा एकमात्र आपको संतुष्ट करना है.
It's my only desire to please you.
मेरी एकमात्र इच्छा यही है.
Lord Chaitanya said, it will please me if you ask for a benediction.
Chaitanya Mahaprabhu कहा अगर कुछ मांगोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा.
Sridhar said, I only want to be the servant of the servant of the servant of your servants.
Sridhar ने कहा मुझे केवल आपके
that blessing.
मुझे केवल आपके दास के दास का दास बनना है. मुझे यही एक वरदान दीजिए.
He wanted to simply find joy in helping others to be happy with Krishna.
उनको केवल दूसरों को कृष्ण की सेवा में युक्त होने देखकर वो जो आनंद मिलता है उसी आनंद में मग्न रहना था.
And then he ended by saying, "And let that little boy Nimai always come and steal my bananas."
और एक बात, वो जो युवक निमाई, वो सदैव मेरी कुटी में आता रहे और मेरे केलों की चोरी करता रहे.
So whether we are kings or whether we are simple banana sellers, the true success of our life is to truly be recognizing that Krishna is in the center of the world. Krishna is the center of my desires. Krishna is the center of my relationships.
अगर हम राजा हों या केले बेचने वाले कोई मामूली व्यक्ति हों, कृष्ण मेरे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, कृष्ण मेरे विश्व के केंद्र बिंदु हैं, जो भी मैं कुछ भी करता हूँ उसके केंद्र बिंदु कृष्ण है, ये जानना, यही हमारा वास्तविक यश है।
इन दिस सेंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर इज एक्सप्रेस्ड इन आवर लाइफ through being in the role of the servant of the servant of the servant.
To das ke das ke das ke roop mein rehna, isi mein hum Krishna ko kendra mein rakhne ki sankalpana ka ek vyakhya samajh sakte hain.
Krishna is not different than his name.
Krishna apne naam se abhinn hai.
Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. The greatest benediction in this age of Kali is that Krishna has descended in his name.
Shri Krishna apne naam ke roop mein avtarit hue, yahi is Kaliyug ka sabse sarvashrestha vardaan hai.
The name of Krishna is all pure. By chanting it with sincerity, it cleanses our hearts.
Krishna naam ati shuddh hai, nirmal hai, aur uska jaap karne se hamare chitta ki shuddhi ho sakti hai.
By chanting the name of Krishna sincerely, it awakens the love and the peace and the happiness that's eternally the treasure of our soul.
और हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की जो संपत्ति है, जो प्रेम, जो शांति, वो इस नाम कीर्तन से उदित होती है.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches us how we should chant.
और किस प्रकार से नाम का कीर्तन होना चाहिए, ये भी चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं.
त्रिनारपि सुनिचे नातरोर इबा सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. With the humility of the grass.
तृण के समान नम्रता.
With the tolerance and the will to forgive as a tree.
एक वृक्ष के समान सहिष्णुता, दूसरों को क्षमा करने की भावना.
To be eager to offer all respects to others.
दूसरों को मान देने में अति उत्साह.
To find joy in valuing and appreciating others.
दूसरों के यश को मनाने में आनंद, स्तुति करने में आनंद.
To rejoice in the spiritual success and blessings of others.
दूसरों के आध्यात्मिक यश को मनाने में आनंद.
And not to demand respect for oneself.
और अपने प्रति किसी भी प्रकार के सम्मान को तुच्छता से देखना.
We do not have much control over how people respect us, but we do have control how we respect others.
दूसरे हमारा सम्मान कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम दूसरों का सम्मान किस प्रकार से करें, ये इस बात के ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता
है. And in giving, we receive Krishna.
और इस प्रकार से कृष्ण को दूसरों को प्रदान करने की प्रक्रिया में ही हम अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं.
Sudama was also very poor.
सुदामा विप्र भी अति दरिद्री थे.
And he brought some little chipped rice for Krishna in Dwarka.
और उन्होंने द्वारकाधीश भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा मुट्ठी भर पोहा लेके आए वो.
Seeing the beautiful palace of Rukmini and Krishna, how could Sudama give Krishna some old chipped rice that he begged from some person's house?
Maharani Rukmini Devi aur Dwarkadish Bhagwan ke is ati sundar raj prasad raj mahal ko dekhkar Sudama dusro paraye ghar se bheek mang kar laaye hue poe ko kaise Bhagwan ko de sakte hain?
But Krishna stole. Krishna snatched it and ate one portion.
लेकिन कृष्ण ने चोरी करके झपट कर छीन लिया उनसे और उसको खाना.
And he was so happy. For Krishna, that little old chipped rice tasted like nectar because it was from the heart of his devotee.
और कृष्ण को उस छोटी सी सादी वस्तु खाकर इतना आनंद हो गया, उनको वो अमृत से भी अधिक मधुर लगा.
When Sudama went home, he saw his little hut had become a royal palace.
Sudama अपने घर में गए तो देखा कि अपनी जो एक झुग्गी झोपड़ी थी वो अभी एक राजमहल बन गया था उसका.
And he and his wife lived the same way, with the same spirit of being the servant of the servant of the servant, always chanting the Lord's names, just as before.
और सुदामा और उनकी पत्नी पूर्ववत जिस प्रकार से भगवान के नाम का जाप करते थे, अपने आप को दास के दास का दास समझते थे, उसी राजमहल में उसी प्रकार से रहने लगे.
Sankirtan is when we have that spirit. Sankirtan means together we chant the names of the Lord.
सब हम सम्मिलित होकर जब कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं.
In that mood of keeping Krishna in the center.
इस भावना में कि हम इस प्रक्रिया में कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं.
Krishna gives us gurus to help us to remain focused in that way. And he gives us sadhus and sastras.
इस बात के ऊपर हमारा मन केंद्रीभूत रहे उसी के लिए भगवान कृष्ण गुरु को भेजते हैं, साधु उनको भी भेजते हैं.
This is the 50th year of Srila Prabhupada establishing ISKCON.
Srila Prabhupada ने ISKCON को संस्थापित स्थापना करते हुए अभी ये 50 वर्ष हो गए, सुवर्ण जयंती मना रहे हैं हम उसकी.
And he has given us these timeless principles that we are speaking tonight.
और जो आप जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं ये सब कालातीत तत्व श्रील प्रभुपाद ने ही हमें सिखाए हैं.
By sharing these principles in our life with others is how we keep Krishna in the center.
इन तत्वों को अपने जीवन में रखकर दूसरे के साथ भी इनको देना, इसी के द्वारा हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रख सकते हैं.
We raise our arms together and with joy of seeing others being inspired, we chant the holy names.
और जब हम दोनों हाथ ऊपर करके खुद भी जय घोष करके भगवान का नाम लेते हैं और दूसरों को भी करते हुए देखते हैं, उसमें हमारा आनंद बढ़ता है.
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे.
This is Vrindavan.
ये वृंदावन है.
I'll close with the beautiful example of Govardhan Leela.
मैं गोवर्धन लीला के ऊपर कुछ बात करके इस उपदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ.
Such a community in the most desperate, devastating crisis where rainfalls were coming that were ready to destroy everything and everyone.
मुसलधार वर्षा किस प्रकार से एक पूरे समाज को नष्ट करने पर तुली है, फिर भी ये सुंदर वृंदावन का समाज उसी इसमें टिका रहा.
Everyone realized, I'm helpless.
सब जानते थे कि मैं हताश हूँ.
Even with my intelligence, even with my strength, even with so many cows, or I'm helpless.
मेरी बुद्धि, मेरी संपत्ति, मेरा कितना भी गोधन है, हर चीज में मैं अभी हताश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता.
Together as a community, everyone humbled themselves.
सारा समाज एकत्रित होकर सबने अपने आप को अत्यंत नम्र समझा.
And they all together called out Krishna's name.
और सबने कृष्ण के नाम को पुकारा.
Krishna lifted Govardhan.
भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया.
He was in the center and everyone was around.
भगवान कृष्ण केंद्र में थे और बाकी सब उनके इर्द गिर्द थे.
Everyone was absolutely completely satisfied even in the worst crisis.
और सब लोग इतना घोर संकट आने पर भी सब लोग आनंदित थे, संतुष्ट थे.
Because they were remembering Krishna in this beautiful form of Giridhari.
क्योंकि गिरधारी के रूप को देखते हुए वो सब कृष्ण का स्मरण कर रहे थे.
And everyone could see how everyone else was absolutely happy just to be with Krishna.
और हर एक व्यक्ति ने देखा कि दूसरा व्यक्ति भी कृष्ण को देखते हुए कितना आनंदित है.
That is community.
यह है समाज.
Where our aim is to try to help be an instrument that everyone is happy with Krishna.
जिसमें हमारा यही उद्देश्य रहे कि दूसरा भी कृष्ण के निमित्त के रूप में सदैव आनंदित रहे.
Where we really care about each other.
जिसमें हम एक दूसरे की अच्छी तरह से निगरानी कर सके.
So that we can remain united on the spiritual level.
कि हम इस आध्यात्मिक स्तर पर एकत्र एक हो जाएं.
And chant the holy names.
और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, कीर्तन करें.
And in this very beautiful state of Goa, where people from all over the world are looking for happiness.
और गोवा के इस प्रदेश में सारे विश्व के कोने कोने से लोग आनंद की खोज में आते हैं.
You are so fortunate, you have the opportunity to give real happiness.
आप इतने भाग्यशाली.
What they're truly looking for.
आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप उन लोगों को जिसकी वो सही में खोज कर रहे हैं वो आनंद यहाँ पर आप प्रदान कर सकते हैं.
But it begins with sharing it with each other.
लेकिन इसका आरंभ एक दूसरे से श्री कृष्ण को देने से होता है.
Thank you very much.